नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। बिहार में कल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इस चरण में भारत नेपाल सीमा पर स्थित विधानसभा क्षेत्रों और सीमांचल, मगध, शाहबाद, कोसी और मिथिलांचल क्षेत्रों में मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 3,70,00,000 से अधिक मतदाता 1,302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 136 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। सुरक्षा कारणों से कुछ विधानसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। ऐसे मतदान केंद्रों की संख्या 1,202 है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में एनडीए और महागठबंधन उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला है।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में एनडीए की ओर से सबसे अधिक 53 प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से और 44 उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड से चुनावी मैदान में हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 15, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 6 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल 71 और कांग्रेस 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मुकेश सहनी के नेतृत्व वाले विकासशील इंसान पार्टी ने 8 और सीपीआई माले ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के 12 कैबिनेट मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के लिए भी कल ही उपचुनाव होंगे। मतगणना 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से भूटान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 1020 मेगावाट की पुनात सांगशु 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगये वांगचुक की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल होंगे और भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबके से भी मुलाकात करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शहरी सहकारी बैंकों को महत्वाकांक्षी युवाओं और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए आगे आना चाहिए। आज नई दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश ने वर्ष 2024-25 में लगभग 1,51,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्माण का लक्ष्य हासिल किया है। इसमें रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का योगदान कुल निर्माण का 71.6% है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों की पहली बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में आर्थिक मामले विभाग के सचिव, केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और आर्थिक मामलों के विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय चेन्नई स्थित वायुसेना सभागार में कल विशाल शिविर का आयोजन कर रहा है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग इस वर्ष 1 तारीख से 30 नवंबर तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के चौथे चरण का आयोजन कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाला संसद का शीतकालीन सत्र विधायी कार्यों, सरकारी नीतियों और जन मुद्दों पर सार्थक और व्यवस्थित चर्चा पर केंद्रित होगा। भारत विकसित यंग लीडर्स डायलॉग क्विज में 50,00,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। इसने पिछले संस्करण के 30,00,000 प्रतिभागियों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस वर्ष क्विज का आयोजन 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक सभी राज्यों, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया। हॉकी इंडिया ने आगामी FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। ज्योति सिंह टीम की कप्तानी करेंगी। यह विश्व कप 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक चिली के सेंटियागो में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।